ओम शांति। जिस प्रकार से इस यज्ञ की स्थापना आदि पिता पिता श्री ब्रह्मा बाबा आदि देवी मम्मा इनका अपना विशेष पार्ट रहा, ऐसे ही इन्हों के साथ हमारे ये आदि रतन दीदी दादी अन्य दादियां अभी भी अपने दादी के मुख के द्वारा दीदी की कई विशेषताएं सुनी। इन रत्नों का भी इतना ही महत्वपूर्ण पाठ है। उसमें से आज हम सब विशेष अमृत वेले से लेकर के हम सब की जो परम श्रद्धे प्रेरणा मूर्त आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी, उनका भी बहुत विशेष पाठ रहा। जिस समय यज्ञ यहां पर ट्रांसफर हुआ तो सबसे पहले बाबा ने दीदी को भारत में ऐसा स्थान चुनने के लिए भेजा था और माउंट आबू दीदी ने पसंद किया था। उसके पश्चात दादी ने मुझे अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा है। यज्ञ बहुत अच्छी रीति से चलता रहा। दीदी के जीवन की कुछ विशेषताएं जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं इस मधुबन के प्रांगण में पली हूं। 1971 में मैं मधुबन आई, तब बहुत छोटी थी। दीदी ने इतने प्यार से पाला संवारा और सिखाया है। पहले नंबर में दीदी किसी की भी कसौटी बहुत अच्छी रीति से करती थी कि आप सचमुच बाबा में निश्चय बुद्धि है, उस बात को दीदी देखती थी। अभी दादी ने आप सबको पूछा ना कि आप सब निश्चय बुद्धि हैं। ऐसे ही मैं भी जब 1971 में मधुबन आई तब छोटी थी और अपनी टीचर के साथ पार्टी में आई थी, तो मैं कहा कि अब मुझे वापस अपने सेंटर पर नहीं जाना है, मुझे यहाँ पट्टी करनी है। तो दीदी के पास में समाचार गया तो दीदी ने कहा, बुलाया, और तब मधुबन में जो अभी एक छोटा सा कमरा था, दीदी ऐसे गद्दी पर नीचे बैठती थी और सामने में हम लोग मिलते थे। तो दीदी ने बुलाया और दीदी बाहर का रूप इतना ऑफिशियल कर लेती थी जिससे उसको आप पहचाने कि सचमुच अभी दीदी बड़ी ऑफिशियल है, मैं निश्चय बुद्धि हूँ, मुझे दीदी के लिए प्यार है। तो दीदी ऐसी ऑफिशियल होकर के गद्दी पर बैठी थी। जैसे मैं रूम में आई तो मेरी टीचर साथ में थी, उसका नाम गंगा बेन था। तो दीदी उसकी तरफ देख करके कहती है, अच्छा गंगे ये बाल की है, ये कहती है मुझे यहाँ रहना है। माना मैं डर जाऊं, बाहर का ही रूप था, अंदर से तो बहुत मीठी थी दीदी। बैठो, बैठ गई। कब जाना है? दीदी मेरे को यहाँ रहना है, बट्टी करनी है। क्यों, तुम्हारी बट्टी है क्या? मैंने कहा नहीं दीदी मेरी बट्टी नहीं है, लेकिन मेरी दिल है, मैं बट्टी करूं। फिर देख करके, अच्छा तुम्हारे घर में बर्तन कौन साफ करता है? मैंने कहा दीदी काम वाली साफ करती है। उसके बाद कहती है, तो तुमने सामने की कॉलोनी ये देखा है, भी भोली का भंडारा देखा है? मैंने कहा जी दीदी। तो कहा दीदी को तो जरूरत नहीं है तुम मधुबन में रुको, तुम कहती है मुझे मधुबन में रुकना है, तो भंडारे से जो माइयां काम करने वाली हैं उसको दीदी हटा देंगी, तुम बर्तन साफ करना। मैंने कहा दीदी करेंगी। कहती मुट्ठी, तब मैं बहुत छोटी दिखती थी, स्कर्ट पहनती थी, डेगड़े के अंदर बैठ जाएंगी, दिखाई भी नहीं देंगी, बोलती कैसी है मैं बर्तन साफ करेंगी, थाली साफ नहीं की है और कहती है डेगड़ा साफ करेंगी। सब डराने के लिए, माना मेरी परीक्षा दीदी ले रही थी। मैंने कहा दीदी मुझे आता नहीं है लेकिन मैं सीख जाऊंगी। दूसरा प्रश्न पूछा, कचरा पोछा कौन निकालता है? तो मैंने कहा कि वो तो घर में तो हम लोग छोटे छोटे पढ़ते थे, कामवाली करती है, तो का सामने कॉलोनी देखी है, वहां से ट्रेनिंग सेंटर से माई को निकाल देंगी कचरा पोछा निकालना। मैंने कहा मैं लगाएंगी। तीसरा प्रश्न मुझे पूछा, कल तुम्हारे घर से टेलीग्राम आए तुम्हारी मम्मी ने या पापा ने किसने शरीर छोड़ दिया है, तो तुम रोएंगी? तो मैं छोटी तो थी, मैं दीदी को कहा कि दीदी मुझे रोना आ जाता है लेकिन मैं फिर भी रोएंगी नहीं, आप मेरे को भेजना नहीं। तो कहा कि यहां से तुमको दिल्ली भेजे, दिल्ली से तुम मुरादाबाद जाए, वहां तक तो तुम रोते रोते मर जाएंगी। मैंने कहा नहीं मैं रोएंगी नहीं। इस रीति से दीदी ने कसौटी ली, पेपर में मैं पास हुई और उसके बाद में मैंने मधुबन में रहना शुरू किया 1971 में। एक एक बात पर दीदी का बहुत ध्यान था। सबसे पहली बात जो अभी दादी जी ने सुनाई, दीदी का स्टूडेंट लाइफ पर बहुत अटेंशन था और हमेशा कहती थी, मैंने अपनी डायरी के पहले पेज पर लिखा था दीदी की विशेषता, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। दादी प्रकाशमणि कहती थी आई लाइक वेरी बिजी लाइफ, उनको बिजी लाइफ। दादी जानकी कहती थी दूसरों को टीच करने से पहले खुद को टीच बनो, टीचर बनने से पहले खुद को टीच बनो। तो इन्हों से वो प्रेरणा ली। दीदी के पास में मैं बाजू में बैठती थी मुरली सुनने के लिए, तो बड़े ध्यान से दीदी मुरली लिखती थी, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस निकालती थी। लेकिन जैसे दीदी का स्टूडेंट लाइफ में मना पढ़ाई पर इतना अटेंशन था, ऐसे दीदी का बैलेंस था। दीदी कभी कभी हम सब छोटे छोटे थे तो मस्ती भी करती थी। मैं दीदी के बाजू में बैठी होती थी और दीदी ठंडी के कारण से रजाई हल्की सी ओढ़ करके हॉट वाटर बैग लेकर के बैठती थी, हाथ गर्म रहे। मैं पॉइंट लिखती थी तो हाथ एकदम ठंडा हो जाता था, तो मेरा हाथ ऐसे पकड़ करके देखती थी ठंडा है, फिर ऐसे इशारा किया अंदर में बैग पर रख करके ऐसे गर्म करती थी। फिर इतने में सामने दादी का अगर ध्यान जाता था तो मेरे को ऐसे इशारा करती थी, देखो दादी देख रही है। बना जैसे एक बचपन में बच्चे को पालना दी जाती है, लेकिन सिखाया बहुत ध्यान से। मुरली लिखने के बाद में फिर मैं दीदी के पास में जाती थी, कहती थी बैठो यहाँ, आज बाबा ने कहा। उसमें से दीदी प्रश्न पूछती थी तो कई बार सोचती थी आज बाबा ने ऐसा कुछ कहा क्या, इतनी गहराई से दीदी प्रश्न निकालती थी। फिर दीदी पत्र लिखती थी, मैं पत्र लिखने के लिए दीदी के साथ बैठती थी, देखा ये पढ़ी लिखी, इसने तीन पत्र लिखा, दीदी ने छह पत्र लिख दिया, इतना अच्छा दीदी फास्ट लिखती थी। फिर वो पत्र लिखना दीदी ने सिखाया, क्वेश्चन आंसर कैसे निकाला जाता है वो क्वेश्चन आंसर करना सिखाया। फिर रोज दिनचर्या पूछती थी, सारे दिन में तुमको ज्ञान का चिंतन कितना चला, किसके साथ बैठी, फिर तुमने उसके साथ में क्या बात की, फिर उसके बाद क्या बात की। तो सिखाती थी कि जब बहनें आपस में मिलती हैं तो पहले ज्ञान की बात से बातें शुरू करती हैं, फिर बात करते 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 नीचे उतर आते हैं, संसार समाचार पर चले जाते हैं। तो उस बात का भी बहुत दीदी अटेंशन खिंचाती थी कि किसी ऐसे संग में ना जाए जिसके कारण से कुछ उनके गलत संस्कारों का प्रभाव पड़े। दूसरी दीदी की विशेषता थी एक व्रता थी। एक बाबा में बाबा की श्रीमत पर अटूट विश्वास, और जैसे खुद को अटूट विश्वास था ऐसे हम सब के अंदर में भी वो संस्कार डालती थी। दीदी कहती थी आंख मीच करके बाबा ने जो कहा है वो कर दो, और वो दीदी की खुद की अपनी धारणा थी। अमृत वेले इतना प्यार से उठती थी, तैयार होकर के योग में आती थी। रात्रि को भी मैं जब दीदी के पास गुड नाइट करने जाती थी तो कहती थी देखो सारे दिन की ड्रेस गंदी चेंज करके मुंह धुलाई करके बड़े प्यार से सारे दिन की मुरली का चिंतन करके उस साजन को मिलने के लिए जाने का, कि आज की मुरली से मैंने ये श्रृंगार किया है, तो श्रृंगारी मूर्त बन करके फिर साजन से मिलने के लिए जाने का, उसको गुड नाइट करने की। तो वो एक संस्कार डाला। तीसरा, हर बात के अंदर में परफेक्ट, कोई भी काम, ये चादर ऐसे बिछी आज आप देखते हैं ना सारे यज्ञ के अंदर, तो वो संस्कार डाला एक क्रीज भी नहीं होनी चाहिए। तो मुझे याद है मैं एक बार दीदी को भोजन करा रही थी, आम की सीजन है ना, तो मैंने आम काट करके दीदी को दिया। तो जब आम काटा तो बीच से दो फाड़ी करते ना, दो भाग होती है, तो वो बीच से ऐसे टेढ़ी हो गई। तो जब दीदी के पास रखी तो दीदी ने मुझे पूछा, ये किसने काटा है? मैंने कहा, दीदी मैंने काटा है। तो कहती है, दीदी नहीं खाएगी, ये टेढ़ा कटा हुआ है ना, तो दीदी की बुद्धि टेढ़ी हो जाएगी। तो मैं सॉरी किया दीदी को, मैंने कहा, सॉरी दीदी, मैं आगे से ठीक काटूंगी, पर ना ये दीदी तो नहीं खा सकती है, ये जिसने काटा है ना, ये सरला ही खाएगी। मेरी आंख में पानी आ गया, छोटी थी। फिर दीदी को सॉरी किया, दीदी मैं आगे से ध्यान रखूंगी, मैं अच्छा काट करके दूंगी। बोला, नहीं, तुम आम लेकर के आओ, दीदी तुमको सिखाएगी। आम धुलाई करके लाई, उसके साथ नैपकिन, चाकू, सब पोछा हुआ ठीक से उसमें पास थी, वो ला करके दीदी को दिया। फिर दीदी ने आम ऐसे लिया हाथ में, सबसे पहले बीच में ऐसे लाइन काटी, उसके बाद ऐसे उतारा, फिर मुझे दिखाया, इसमें कोई कहां टेढ़ा है? मैंने कहा, दीदी अभी ऐसे काटूंगी, कल से भूल नहीं करूंगी। पर बोली, नहीं, ये टेढ़ा काटा हुआ तो सरला ही खाएगी। और दीदी ने अपने सामने में मुझे वो टेढ़ा कटा हुआ आम खिलाया। आंख में आंसू आ रहा था, छोटी थी ना, लेकिन बोला, नहीं, इसको तुम ही खाएगी। खिला दिया, सारा काम पूरा हो गया। शाम के समय पर ऑफिस में बैठी हुई थी, मुझे बुलाया। बुलाने के बाद बाजू में बिठा करके कहती है, अच्छा आज का तुम अपना मनसा का चार्ट सुनाओ। क्योंकि मालूम तो था ना मुझे, अंदर में नहीं अच्छा लगा है, आंख से एक आंसू भी दो निकले हैं, तो इसको संकल्प चला होगा। मैंने कहा, दीदी मेरे को संकल्प चला, मेरे से भूल हो गई। और फिर क्या संकल्प चला? फिर दीदी ने वो पूछा, अच्छा उसमें तुमको बाबा याद आया? मैंने कहा, नहीं बाबा याद नहीं आया, बार बार संकल्प चल रहा था। फिर बिठा करके प्यार से समझाया, देखो मैंने तुम्हें इसलिए खिलाया, आज के बाद तुम कभी भी भूल नहीं करेंगे। मैं अगर नहीं खिलाती थी, तुमको लगता ये तो चलता है ना, टेढ़ा हो गया तो क्या हुआ, तुम्हारे संस्कार में परिवर्तन नहीं आता। तो इस रीति से प्रेम भी था और हर चीज में, हर कार्य के अंदर परफेक्ट, थोड़ा सा भी इधर से उधर नहीं, इसको यहां रखना है तो एक भी क्रीज नहीं आनी चाहिए। रैपर लगाते हैं ना कई चीज को जब गिफ्ट करते हैं, एक बार रैपर लगाया तो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। मुझे लच्छू बहन बोली, नहीं तुम इसको खोल दो। मैंने कहा, लच्छू दादी थोड़ा सा तो टेढ़ा है ना, वो थोड़ी कोई देखता है। बोली, देखो मैं दीदी के पास लेकर के जाएंगी ना, तो दीदी फिर इसको तुम्हारे सामने खुलवाएंगी, इसकी जगह तुम यहां से ठीक करके फिर लेकर के जाओ। तो उस रैपर को ठीक किया, फिर दीदी ने देखा तो दीदी कहती है, तुम बहुत होशियार हो गई है, तुमने तो बड़ा अच्छा रैपर किया। तो लच्छू दादी ने मेरे सामने ऐसे देखा, मैंने भी उसके सामने देखा कि होशियार मैं नहीं हूं, पर इन्होंने मुझे सिखाया। फिर मैं दीदी को बताया कि मेरे को लच्छू दादी ने बताया, ऐसे नहीं, ऐसे पैक करना चाहिए। तो बाबा जो हमें 16 कला संपूर्ण बना रहा है, ये कलाएं हैं। हर काम परफेक्ट चलेगा, इसमें क्या है, खाना ही तो खा रहे हैं, नहीं, जो सिस्टम है, पानी का ग्लास राइट हैंड साइड में रखना है तो उसी साइड में रखना है, चाकू पोंछ करके रखना है तो पोंछ करके रखना है, हर चीज को बहुत एक्यूरेट। ये हमारा दिव्यता का संस्कार वो बड़ी दीदी के अंदर था। जैसे दादी ने कहा, वो हरेक को सेल्वेशन देती थी, उस पर भी दीदी का बड़ा ध्यान रहता था कि इसको किस चीज की आवश्यकता है, किसके कारण से इसका कोई गलत संकल्प ना चल जाए, इससे कोई गलत काम ना हो जाए, तो भी दीदी बिठा करके पूछती थी। मुझे कपड़ा धुलाई करना नहीं आता था, तो मेरा कपड़ा धुलाई धोबी में जाता था और एक बहन थी वो कभी कभी धुलाई कर देती थी। दीदी के पास में कंप्लेन गई, दीदी ने मुझे बुला करके कहा कि क्यों ऐसा तुम करती। मैंने कहा, दीदी मेरे को ये आता नहीं है, ये मुझे सिखाती है। फिर उसकी दीदी ने मुझे व्यवस्था करके दी कि ये कपड़ा तुम इधर धोबी में डालना, ये कपड़ा तुम ऐसे करना। जो भी उसके लिए फैसिलिटी मुझे चाहिए थी, व्यवस्था चाहिए थी, वो सारी व्यवस्था दीदी ने करके दी। क्योंकि अगर व्यवस्था नहीं देंगी तो मेरे से गलत काम होगा, उसका कोई ना कोई ऑल्टरनेट हम निकालेंगे। तो छोटी छोटी बातों पर दीदी का बहुत ध्यान रहता था। रमणीक भी इतना थी। ये फर्स्ट अप्रैल आता है ना, तो फर्स्ट अप्रैल के दिन फूल बनाते हैं, तो फर्स्ट अप्रैल था तो दीदी ने भंडारे में आकर के भोली दादी को बोला कि वड़ा बनाओ, काजू इसका पिस्ता होता है पिस्ते का, तो पिस्ते का एक वड़ा बनाया। एक वड़ा बनवाया दीदी ने, ये जो चेवड़ा होता है, तला हुआ चेवड़ा नहीं खाते हैं, उस चेवड़े का, और उसके अंदर में नमक डलवाया। तो दोनों वड़ा लेकर के सुबह सुबह दीदी दादी के पास में गई गुड मॉर्निंग करने के लिए। बड़ा प्यार से मिले दोनों। फिर दादी को कहती है, दादी आज दीदी आपको बाबा की याद में एक टोली खिलाती है। तो दादी को भी ख्याल था कि हाँ दीदी शायद आज फर्स्ट अप्रैल है तो दादी को फूल बनाएंगी। तो दादी ने कहा कि नहीं, पहले दीदी खाएंगी पीछे दादी खाएंगी। तो दीदी ने क्या किया, नीचे में था अच्छा वाला वड़ा और ऊपर में था जो नमक वाला था, तो नीचे से निकाल करके दीदी ने खा लिया। तो दादी को लगा कि नहीं दीदी खा रही है इसलिए अभी तो ठीक होगा। फिर ऊपर वाला जो था वो दीदी ने बड़े प्यार से हाथ में लेकर के दादी के मुख में खिलाया, तो दादी के मुख में तो नमक आया, तो दादी ने निकाल दिया। फिर जो दोनों ने हंसा, जो हंसा तालियां बजा करके, तो माना इतना गंभीर भी थी, पुरुषार्थ और पढ़ाई के लिए फुल अटेंशन भी था, तो इतना रमणीक भी थी। तो रमणीकता और गंभीरता का बैलेंस वो हमने बड़ी दीदी के जीवन में देखा। दादी और दीदी की जोड़ी इतना ही आपस में जिन्होंने इस यज्ञ को चलाया। ऐसी बहुत सारी बातें जो मैंने दीदी से सीखी हैं। एक बार बैठी हुई थी दीदी और मैं फिर सेंटर से पार्टी लेकर के आई, सिखाती थी तो पार्टी लेकर के गई, तो दीदी को मिलने के लिए गई तो दीदी बिजी थी तो वापस आ गई। दूसरा बारी गई तो भी दीदी किसको मिल रही थी, फिर वापस आ गई। तो दीदी को लगा कि अभी ये सेंटर पर चली गई है और इसको दो दिन हो गया ये मुझे मिलने के लिए नहीं आई, ओम शांति करने नहीं आई। तो जब तीसरा बारी दीदी के पास में गई तो कहती है, देखा ईशु ये सेंटर इंचार्ज आई है। माना मैं बड़ी हो गई हूँ, दीदी को दो दिन से आकर के मिली नहीं हो, तो दीदी ने इस रीति से मुझे बोला कि ये सेंटर इंचार्ज आई है, पार्टी में दो दिन से बहुत बिजी है ना, इसलिए दीदी को ओम शांति करने नहीं आई। सिखाती थी। हमारा फर्ज है जब हम आए हैं तो पहले बड़ों को मिलें। तो मैंने फिर दीदी को सुनाया, मैंने कहा दीदी मैं आते ही आपके पास में आई थी तब आप इससे बात कर रही थी, इस बहन को नाम दिया। दूसरा बारी जब मैं आई तब आप अपने ऑफिस में इसके साथ बात कर रही थी, फिर मैं वापस चली गई। तो दीदी को ख्याल आया कि नहीं ये मुझे मिलने के लिए आई थी, फिर मुझे कहा कि भले दीदी बिजी हो तो भी तुम सामने आकर के दीदी ओम शांति इतना जरूर कहो, फिर जब दीदी को समय होगा तब दीदी तुमको बुला लेगी। तो सिखाती थी कि हर काम किस रीति से, बड़ों के साथ का हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए, उनके साथ हम कैसे संपर्क में रहें। तो हर छोटे से छोटी बात को, बहुत छोटी छोटी बात को दीदी सिखाती थी, जिसकी शिक्षाएं आज हमें जीवन में इतना याद आती हैं, और आज अगर जीवन बना है तो इन्हीं दीदी और दादियों की शिक्षाओं ने इतना आगे बढ़ाया है, इनकी दुआओं ने आगे बढ़ाया है। लास्ट में एक और छोटा सा अनुभव कहकर के मैं वाणी को विराम दूंगी। मुझे दीदी ने रोटी बनाने की सेवा दी। मधुबन में तब तो तवे पर रोटी बनती थी ना, छोटी थी तो तीनों समय रोटी बनाती थी, सुबह नाश्ता बनाने का, दोपहर को रोटी और रात की रोटी। लेकिन तब मधुबन तो बहुत छोटा था, अभी तो इतने लोग रहते, तब तो कुछ लोग रहते थे। तो तीनों टाइम रोटी बनाने से क्या हुआ, वो धुआं जो आंख को लगता था ना, तो आंखें जलने लगी। और छोटी थी तो समय इतना खड़ा रहना, लकड़ियां डालना, तो मुझे खाना कम हो गया, मेरा भोजन कम हो गया। और दूसरा, बाबा ने एक मुरली चलाई कि अब बच्चों को गुप्त पुरुषार्थ करना चाहिए क्योंकि समय बहुत कम है। और उस समय बाबा ने कहा था 76 में विनाश हो जाएगा और 72 चल रहा था, तो मुझे भी बड़ी चिंता होती थी कि इतना लास्ट में हम लोग आए हैं, दादियां इतना आगे और विनाश हो जाएगा, हमने तो अभी कोई पुरुषार्थ किया नहीं है। तो उसके कारण से एकांत में ज्यादा जाकर के बैठती थी। एकांत में बैठती थी तो दीदी के पास कंप्लेन गई कि अभी इसको अपना लौकिक घर याद आता है, इसलिए किससे बोलती नहीं है, और जब बैठती है तो रोती रहती है। तो रोती नहीं थी, लेकिन वो धुएं से जो आंखें जलती थी ना, तो आंख से पानी निकलता था, इसलिए आंख खुली नहीं रहती थी, तो आंख बंद कर लेती थी, तो लगता था इसको घर याद आता है। पर दीदी ने ऐसे नहीं बोला मुझे घर याद आता है, बहुत प्यार से बुलाया। बुलाने के बाद में अपने पास में बिठाया, बिठा करके कहती है, दीदी को सरला एक विचार आता है, दीदी को विचार आता है, तुमको बहुत दिन हो गया मधुबन में आए हुए, तो तुम घर चक्कर लगा करके आओ। तुम्हारी माँ का पत्र आया था, वो भी तुमको बहुत याद करती है, रोती है कभी कभी तुमको याद करके। तुम्हारे बाप ने भी लिखा है कि थोड़ा समय के लिए इसको भेज दो, पत्र नहीं आया था, न माँ ने लिखा था ना बाप ने लिखा था, लेकिन अगर दादी दीदी उनकी बात करती है, मुझे उनके लिए मोह होगा, तो मैं फट से क्या कहूंगी, दीदी मैं जाऊंगी। तो मुझे सुनाया, तो दीदी ऐसे समझती है तुम्हारा टिकट रिजर्वेशन करा दे, तुमको भेज दे घर। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं तो नहीं जाऊंगी। बोला नहीं नहीं, वो सब याद कर रहे हैं तुमको, तुम चक्कर लगा करके आओ घर। मैंने कहा दीदी मेरे को नहीं जाना है ना। तब फिर दीदी मुझे बोलती है, तुम सच सुनाना, तुमको अंदर में तुम्हारी माँ याद पड़ती है, तुम्हारा घर याद पड़ता है। मैंने कहा नहीं दीदी, मुझे तो कभी भी याद नहीं आया। नहीं सच सुनाना, तुमको कभी कभी रोना आ जाता है उसकी याद में, एकांत में बैठ करके तुम रोती हो, तुम किसको दिल की बात नहीं कहती हो, दीदी तुम्हारी दिल की सखी है, तुम दीदी को दिल की बात सुनाओ। फिर मैं दीदी को सुनाया कि दीदी मुझे घर याद नहीं आता है, मैं रोती भी नहीं हूँ, पर ये जो रोटी बनाती हूँ ना, उससे मेरी आंखें बहुत जलती हैं, जिसके कारण से मेरी आंख से पानी आता है, और मेरा खाना उसके कारण से कम हुआ है, बाकी उनको याद करके मैंने छोड़ा नहीं है। तब फिर दीदी ने बुला करके मेरी ड्यूटी चेंज की, रोटी बनाने पर किसी दूसरे को लगाया और कहा, अगर मुट्ठी ऐसा था तो तुमको दीदी को आके कहना चाहिए ना कि दीदी तीनों टाइम में ये करने से मुझे तकलीफ होती है। मैंने कहा दीदी मुझे तकलीफ नहीं होती है, पर उससे मेरी आंखें सिर्फ जलती हैं। तो इस रीति से इनडायरेक्ट हमारे से निकलवा करके मैं क्या हूं, मेरी लगाव या झुकाव लौकिक में कहां तक है, उसको दीदी निकालती थी। फिर दीदी को ख्याल आता था कि नहीं, ये बाबा की सच्ची बच्ची है या कैसी बच्ची है। तो दीदी में परख शक्ति भी बहुत थी। आप दीदी के सामने जाकर के खड़े हो, एक बार ऐसे नीचे से ऊपर तक देखती थी और आप क्या हैं वो दीदी बता सकती थी, क्योंकि दीदी के अंदर श्रीमत का बल था, एक व्रता का बल था, और बहुत बाबा से जिगरी जो प्यार था, सच्ची थी, जिसके कारण निर्णय शक्ति और परख शक्ति दीदी की बहुत थी। तो दादी और दीदी की जोड़ी थी। लास्ट में दीदी बीमार हुई थी और बॉम्बे हॉस्पिटल गई, दीदी आई का ऑपरेशन मोती का ऑपरेशन कराने के लिए गई थी, लेकिन वहां जाकर के पता पड़ा कि दीदी को ब्रेन ट्यूमर है। उस ब्रेन ट्यूमर के बाद में काफी टाइम दीदी हॉस्पिटल में रही और दीदी ने फिर 28 जुलाई को अपना व्यक्त देह का त्याग किया। उस समय पर भी दादियां सब ट्रेन में जाती थी, तो ट्रेन मैसाना में 22 मिनट ठहरती थी, शंटिंग होता था, और हम लोग स्टेशन पर कुर्सियां लेकर के जाते थे, दरी लेकर के जाते थे, दीदी बैठती थी, क्लास कराती थी। तो जब दीदी वहां से निकली, उस दिन दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत अच्छी दृष्टि दी और सबसे मिलकर के दीदी बॉम्बे चली गई थी। और तब दीदी से जो वाइब्रेशन आ रहे थे, मतलब अलग प्रकार के वाइब्रेशन थे, और दीदी जब बॉम्बे गई तब भी दीदी को मिलने के लिए मैं बॉम्बे गई थी, और वहां दीदी से लास्ट में भी मिली, और लास्ट में भी दीदी ने दृष्टि दी और बहुत अच्छी रीति से समझाया, अपने पास में बिठाया। तो एक जो जिगरी प्यार था, उस प्यार की ये निशानी थी कि उसने वहां भी मुझे, अंत में मैं दीदी को मिली हूँ। तो दीदी की शिक्षाओं को हमेशा जीवन में धारण किया है और आज भी दिल से वही निकलता है कि इन दादियों ने हमारे पीछे जो मेहनत की है, उसका मुझे रिटर्न इस यज्ञ को देना है। कितना भी हम करें तो भी उतना रिटर्न हम नहीं दे पाएंगे जो आज हमारे ऊपर बाप दादा और दादियों की कृपा दृष्टि है। ओम शांति।
हमें तो वतन की